ओम शांति। आज 1 अगस्त 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो लिंक सवेरे के लिए भी, शाम के लिए भी और प्रतिदिन के लिए एक ही है। आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसी वीडियो में आप सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में कोई सुझाव या विचार है तो उसका भी स्वागत है। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस घर जा नहीं सकते, वापस घर जा नहीं सकते। घर जाने की पवित्रता क्या है? कार्मिक अकाउंट बराबर करना। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। अब बाप की याद से बाबा की श्रीमत पर चलकर आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। ये नेचुरल पवित्रता क्या होती है? हमें घर जाना है, हमें हिसाब किताब बराबर करके घर जाना है।
ज्ञान के बल पर बाबा जो श्रीमत देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसके आधार पर चलकर नेचुरल पवित्र।
मेरे को
कुछ भी मिलावट ना हो
उसमें। नहीं, वो तो बात पवित्रता की आपने डेफिनेशन दी जिसमें मिलावट ना हो, तो ये नेचुरल पवित्र का क्या मतलब हो गया? पवित्र का मतलब मिलावट ना हो। हाँ जी,
आत्मा का तो धर्म है पवित्र। नेचुरल जब परम धाम हम आत्मा रहती है, उसी प्रकार हम सिर्फ आत्मा है, शरीर को ना समझे।
हम परम धाम में जब आत्मा रहती है, हमारे पास कोई मिलावट नहीं होती, फिर ये बैटरी चार्ज करने वाली बात क्या हुई? बैटरी चार्ज करने के लिए क्यों कहा फिर?
क्योंकि जन्म जन्मांतर के बोझ आए हमारे सिर पर, तो बाबा से कनेक्ट करके ये हम हल्के होंगे, हमारे विकर्म विनाश होंगे।
बैटरी चार्ज होने में तो बैटरी चार्ज करेंगे तो बढ़ेगी ना।
हाँ, तभी तो हमारे में विकर में अंदर विकार है, तो उन्हें दूर करना है।
ये बैटरी चार्ज करने वाली बात समझ में नहीं।
आत्मा कमजोर हो गई है ना।
आत्मा कमजोर हो गई है संसार में आ करके, फिर
तो चार्ज तो करना ही पड़ेगा,
उसको चार्ज करना पड़ेगा।
आपको
नेचुरल का मतलब हमें अच्छी तरह समझ लेना है, तो ये बात समझ, ये बात हमें समझ में आ जाएगी कि हम सब आत्माएं परम धाम में, एक हमारी अपनी चरम अवस्था भी है, हम उससे आगे नहीं जा सकते, उससे पीछे भी नहीं रह सकते। हमारा रिकॉर्डेड जो पार्ट है, हम आत्माओं में जो रिकॉर्डिंग है, वो किस कैटेगरी की है, किस स्टेज की है, वो हमारी चरम अवस्था है। बेशक हम वहां संकल्प नहीं कर रहे हैं, परंतु हम आत्माओं का जो रिकॉर्ड है, वो हमारी वहां मेरिट में नंबर रखती है, वो हमारी नेचुरल क्या है, पवित्रता। सभी एक जैसे पवित्र नहीं है, हर एक आत्मा की पवित्रता अलग 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 है। परम अवस्था में सभी हैं, परंतु हर एक की चरम अवस्था अलग अलग है। ये बात समझ में आई है? कोई डाउट है तो पूछ सकते, मतलब क्यों हर एक की नेचुरल पवित्रता अलग अलग है और वहाँ जितना समय कोई आत्मा रहती है तो अपनी उसी पवित्रता में रहती है, उसी स्टेज में रहती है,
उसी हिसाब से नीचे भी आती है,
उसी हिसाब से फिर नीचे भी आती है, उसी हिसाब से नीचे आती है और जाने से पहले उसी अवस्था को प्राप्त करके जाती है। उस अवस्था पर जो आई थी, आने के बाद उसने जो बैटरी को डाउन किया, उस बैटरी को पूरा करके, उतनी बैटरी पूरी भर के उसने वापस परमधाम, ओम शांति, वापस परमधाम जाना है। क्योंकि बैटरी क्यों भरने के लिए जरूरत पड़ी, बाबा ने क्यों कहा बैटरी चार्ज करो, मीन्स जितनी बैटरी हमने खर्च की उतनी बैटरी हमको भर के भी जाना है, हमने अपनी उस अवस्था को प्राप्त करके ही जाना है, तभी तो हम आ सकेंगे। हालांकि बैटरी भरने का मतलब अकर्म का खाता बनाने का मतलब सुख दाम के साथ है, चाहे हमें सत्युग में आना है तो सत्युग के लायक अपनी बैटरी बना के जाएंगे, त्रेता में आना है तो त्रेता तक की बैटरी अपनी फुल करके जाएंगे, द्वापर में आना है, कलयुग में आना है, जहां जिस नंबर पर हमने आना है उस नंबर तक अपनी बैटरी को फुल भर के जाएंगे ना। घर जाने के लिए दोनों चाहिए, घर जाने के लिए हम अभी तक समझ रहे थे कि कार्मिक अकाउंट बराबर करो और घर, ये घर जाने के लिए नियम सबके लिए एक है कि कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, परंतु वापस आना भी है तो आने का नियम है हमारी बैटरी उतनी मेरिट में होनी चाहिए जिस मेरिट पर हमको आना है। ये राज जो हमें नहीं मालूम था वो स्पष्ट हुआ, ठीक है ना।
नेचुरल पवित्रता भर के, यानी कि जिस लेवल तक हमारी पवित्रता थी उसी लेवल तक आ,
हाँ, हर एक आत्मा अपनी उसी स्टेज पर आएगी ना, जिस स्टेज पर वन 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 को जो आत्माएं थी, जो कुछ भी था, जहां जहां थे, तो सब अपने उस स्टेज को प्राप्त करेंगे ना। परमधाम में हम सारे एक साथ गए, हमारी मेरिट बन गई, तो हमारी नेचुरल स्टेज हर एक आत्मा की अलग अलग हो गई ना। क्योंकि हमारी जो मेरिट बनी है वो हमारी नेचुरल स्टेज है, नेचुरल पवित्र बनो, क्योंकि सब एक जैसे एक बराबर पवित्र नहीं है, ठीक है। तो हमें समझ में आई ये बात कि हम आत्मा अपनी बैटरी चार्ज करके नेचुरल पवित्र बनकर घर जाएंगे, तो जैसे थे वैसे जाएंगे, फिर वैसे आएंगे, फिर वैसे जाएंगे। बस बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? रोजाना तो कहता है घर चलो मरो, घर चलो मरो, घर चलो, पर घर चलने के लिए बाबा हमें कौन सी बात सिखलाता है? घर चलने के लिए बाबा को हमें क्या सिखाना पड़ता है?
अपने आप को आत्मा,
अपने आप को आत्मा, हाँ जी, पवित्र बनना। देखो पवित्र बनने के लिए बाबा क्या सिखाते हैं, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, ऐसा होना चाहिए ना बाप, जो मारे कहता मैं किसी को मारता, सारा कुछ एकदम, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इस शरीर में रहते हुए मरना है, और मरने का मतलब होता है मर गए तो सब कुछ भूल जाए, सारे संबंध भूल जाए, कौन माँ कौन बाप कौन पिता कौन पत्नी कौन बच्चे कौन क्या, सब सब बदल जाए, सब आत्माएं हैं, मैं आत्मा हूँ ये भी सब आत्माएं, हाँ तुम वो तो जो भाई लक्ष्य बाबा, जो बाबा छोटी मोटी बात तो करेगा नहीं ना, ये तो नहीं देखेगा ना कि ये बच्चे नहीं कर सकते तो मैं इनको ना बताऊं, वो तो सबको बिल्कुल एक साथ बनना करना सिखाना चाहते हैं। अब कौन कितना समझेगा कितना करेगा, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते। कहते बच्चे समझ लो कि तुम ये देह नहीं हो, तुम इस देह को चलाने वाली आत्मा हो। ये अभ्यास प्रतिदिन पक्का करो, निश्चित करो। ये अभ्यास करना अर्थात मरना सिखलाते हैं। जब हम देह भान से परे जाने का अभ्यास करते हैं अर्थात बाबा हमें क्या सिखाते हैं, मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, ऊपर जाने का मतलब भी क्या होता है, मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। पहले भी हम समझते थे बस सारी आत्मा ऊपर चली जाएंगी, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर, आखिर हमको घर जाना है। समझते थे, कहते थे, गाते थे, परंतु ये आने जाने का राज हमें समझ में आया है। बाकी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। हमें पता था क्या, इतनी बातें के बिना सारा हिसाब बराबर करना, फिर वहां जाना, नेचुरल पवित्र होकर जाना, मैरिट बना के जाना, हिसाब किताब बराबर करके जाना, जो करेंगे जितना करेंगे, जिसको देंगे जितना देंगे उसी से लेना पड़ेगा, क्या सारा कार्मिक अकाउंट, आने जाने का कितना बड़ा राज, एक एक बात बहुत अच्छी तरह समझाई, कहानी की तरह किसी को समझा सकते हैं, सुना सकते हैं। जाने आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है, तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने के। हम आत्मा कहां से आई हैं, ऊपर से आई हैं। ऊपर कहां रखे थे भैया, क्योंकि परम अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है, इसलिए ऊपर से आई है। क्योंकि हम ऊपर से नीचे ही आते हैं ना, परम अवस्था में जैसे ही हमने संकल्प किया तो हम परम अवस्था से नीचे सूक्ष्म अवस्था में आ गए, और जैसे ही स्थूल शरीर में प्रवेश किया तो हम नीचे आ गए, और जैसे शरीर समझा रोज आना नीचे गिरते आए, तो गिरना वहीं से शुरू हो जाता है जैसे ही हम संकल्प करते हैं तो परम अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में आ गए, और सूक्ष्म अवस्था के बाद शरीर में आए तो हम फिर स्थूल दुनिया में आ गए, तो नीचे हमारा गिरना शुरू हो गया। जिसके लिए हम अपनी बुद्धि में रख सकते हैं कि जैसे 12 बजे घड़ी के अंदर सबसे टॉप स्टेज होती है, यदि उसमें 1 सेकंड कम है 59 है तो अभी पूरे टॉप पर नहीं पहुंचे ना, और जैसे हम टॉप पर पहुंचते हैं तो उसके अगले सेकंड हम क्या हो जाते हैं, गिरना शुरू, गिरना शुरू, डाउन। हमारा एरो जो है ना डाउनवर्ड्स हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा एरो, और इधर एरो क्या रहेगा, अपवर्ड्स रहेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो हमारा हाँ जी हाँ, हर आत्मा को कम से कम 1 साल के लिए तो जरूर जाना है।
तो वो 1 साल मतलब जैसे अभी जैसे 12 महीने का होता है वैसे, या फिर
अब देखिए ये अब कहीं कोई 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 भाई बहन ऐसा कह रहे हैं कि चेंज हो जाएगा, अब मैं उसके लिए अपना कोई कमेंट्स दे नहीं सकता क्योंकि कहीं मुझे इशारा मिला नहीं है कि वहाँ साल कम होते हैं या साल दिन 14 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, या 14 घंटे को, पता नहीं क्या क्या जो मर्जी बोल रहे। बाकी इतना जरूर है बाबा ने जो मुरली में हमें दिया है, नंबर एक कि वहाँ 12 महीने सदा बाहर मौसम रहता है, दिन और रात बराबर रहते हैं, और रात को चांद निकलता है, दिन को सूर्य निकलता है। कभी समय ऐसा नहीं होता कि चांद ना हो या सूरज ना हो, अमावस वहां होती नहीं, 12 महीने हर रोज पूर्णमासी रहती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी एकदम सीधी हो जाती है, और जब पृथ्वी सीधी हो जाती है 23.5 डिग्री से, तो फिर रात और दिन बराबर हो जाते हैं। रात और दिन बराबर हमें अब भी रात और दिन बराबर कब होते हैं, इस समय भी जब पृथ्वी सीधी होती है, इस समय भी पृथ्वी सीधी होती है, मीन्स एक ऐसी स्टेज पर होती है कि सूरज से, सूरज के सामने वो एकदम सीधी होती है, तब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। जब सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, अब भी रात और दिन बराबर होते हैं। उस समय महीना लगभग होता है मार्च और सितंबर का, तो मार्च और सितंबर है ना, क्या होते हैं हमारे पास एकदम 21-22 मार्च होती है, 21-22 सितंबर होता है, और तब जो है ना रात और दिन क्या हो जाते हैं, एकदम बराबर हो जाते हैं। तो वहां पर तो 12 महीने, क्योंकि यहाँ तो एक दिन रात और दिन बराबर होते हैं, दो बार होते हैं साल में, एक दिन मार्च में और एक दिन सितंबर में, परंतु वहां तो रोजाना रात और दिन बराबर रहते हैं, क्योंकि तब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा नहीं होती, सर्दी और गर्मी वहां पर नहीं होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइंस से अलग कोई बात नहीं है, बाबा ने बड़ा साइंटिफिक, क्योंकि इसका कारण भी बताया क्यों कि ना, बाबा ने नहीं बताया परंतु ये साइंस का नियम है, क्योंकि जब धरती के टुकड़े हुए, धरती सॉलिड टूटती है, सॉलिड टूटने के कारण धरती का सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट चेंज हो जाता है, सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट चेंज होने के कारण धरती 23.5 डिग्री पर झुक जाती है, और जब परमात्मा आते हैं आकर ये जो परिवर्तन कराते हहैं, तब सारी धरती में आग के गोले जो बरसते हैं, सारी धरती फिर से पुनः आग का गोला बन जाती है, जैसा साइंस में पढ़ते थे, क्योंकि बाउंसर मिसाइल चलेंगे तो प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी पिघल जाती है, चट्टाने भी पिघल जाती हैं, मिट्टी भी पानी हो जाता है, पानी सारा स्टीम हो जाता है, हर मेटल मेल्ट हो जाती है, और जब हर चीज लिक्विड में चली गई है, और फिर जब पानी जो स्टीम बन के गया था, ओजोन लेयर तक सारा जो भी पोल्यूशन था उसको वापस लेकर के आता है, ओजोन लेयर रिपेयर हो जाती है, टेम्परेचर डाउन होता है, रेन होती है, सारा पानी नीचे आता है, सब कुछ दोबारा जमना शुरू होता है, ये सब प्रोसेस एक साल में होता है, तो उस प्रोसेस में जब वो जमना शुरू होता है तो आप समझेंगे कि सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट एक हो जाता है, सब कुछ सेंटर की तरफ धीरे धीरे, क्योंकि हर एक का जैसे मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है, ऐसे सबके जमने का पॉइंट भी अलग अलग होता है, तो हर चीज सीधे सिस्टम से जमना शुरू करती है, तो सारी चीजें सेंटर की तरफ खींचती हैं और जमती जाती हैं, और जमने के साथ साथ क्या होता है, धरती का चारों तरफ एकदम सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन सेम हो जाता है, धरती एकदम सीधी हो जाती है, क्योंकि मेल्टिंग से जमी है तो नियम से जमती है तो एकदम सीधी हो जाती है, और जब टूटती है तो वो सॉलिड टूटती है, तो सॉलिड टूटने के कारण वो इक्वल सेट नहीं होती, जिसके कारण धरती 23.5 डिग्री पर झुक जाती है, तो सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट अलग हो जाते हैं। जानते हैं सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है? एक धरती के ऊपर ट्रायंगल बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, हाँ बारमुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटेशन पॉइंट बहुत ज्यादा है और बाकी जगहों की अपेक्षा, क्योंकि सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट अलग हो गया है ना, तो वहां इतना ज्यादा ग्रेविटेशन, आकाश में भी कोई पक्षी उड़ता हुआ निकल जाए, जहाज कोई निकल जाए, या उस ट्रायंगल में समुद्री जहाज या पक्षी उस एरिया में चला जाए, वो कहां गया फिर कभी नहीं मिला। जितने साइंटिस्ट अपने साथ सामान लेकर के गए कि हम वहां से पिक्चर्स भेजेंगे, सामान भेजेंगे, वो साइंटिस्ट भी वापस नहीं आए, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा सामान वहां पर भेजा परंतु उसका कुछ पता नहीं लगा वो कहां गया है, आज तक मतलब वो एक ऐसा रहस्य बना हुआ है।
भाई जी,
बोलो बोलो।
तब अर्थ में फेज होता है, पूरा सोलर प्लैनेट में फेज होता है।
हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा यूनिवर्स। भाई मैंने कई बार बात किया कि इस समय बहुत सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि आज यदि कोई साइंटिस्ट अपना दूरबीन से किसी तारे को देख रहा है, कहता ये तारा वो तारा है, तो जहां वो जिस तारे को देख रहा है इस समय, तो 5000 साल बाद भी इस समय वो उस तारे को यहां देखेगा कि नहीं देखेगा?
देखेगा।
तो जरूर 5000 साल बाद तारा फिर वहीं पहुंचेगा जहां अब देख रहा है। तो सारा कुछ घूमना है ना। और जो हमारे चंद्रमा के ऊपर सामान छोड़ के आए हैं चंद्रयान के साथ, जो ये भेजा है ठीक, तो वो वहां जो छोड़ के आया है, क्या वो गाड़ी सी ठीक, छह शक्ति शिव शक्ति क्या पुत्र स्थान स्थल बनाया है, तो वापस जाएगा ना अगले कल। तो दूसरा पहले रखा हुआ होगा ना,
वो चंद्रयान तो कहाँ मिलेगा,
तो वापस वो यहाँ आ जाएगा ना, तभी तो जाएगा मिलेगा। तो वो सामान आएगा तभी तो वो सामान जाएगा। यदि सामान वहां छोड़ के आ गए, वो यदि यहाँ नहीं आया तो पिछला रखा रहना चाहिए।
हाँ तो बहुत सारे होने चाहिए
ठीक है। तो वह हर चीज मतलब जो कुछ भी आकाश में भेजी गई है वो सारी की सारी चीजें वापस यहाँ पर आएंगी और फिर जाएंगी ठीक है। हाँ जी चलो, हमें क्लियर हुआ पॉइंट, आगे चले। इस शरीर द्वारा पाठ बजाने, आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने, हम असल वहां के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। तो जहां से हम आए हैं हमको वहां वापस जाना है। वापस क्यों जाएंगे? ताकि हम आ सके अगले कल्प में पाठ बजाने के लिए। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। है कोई तकलीफ? गुटका नहीं खाना है, इसको कहा जाता है सहज याद। झुटका और गुटका में क्या याद हो, क्या अंतर होता है? एक होता है झुटका, होता है नींद का झुटका, और एक है गुटका, ये होता है घुटन महसूस करना। क्या करूं?
दबाव में बैठना।
हाँ जी
दबाव में बैठना।
दबाव है नहीं, गुटका मतलब जैसे घुटन महसूस होना, क्या करूं अब मैं, ये तो मेरे से नहीं हो सकता। मतलब जिसमें हम ऐसा महसूस करते हैं मूंझ जाना, जिसको हम कहते हैं ना कि किधर जाऊं कैसे करूं, कुछ रास्ता उसको समझ में नहीं आ रहा। गुटका में तो है कि नींद आ गई, यानी परंतु गुटका में क्या है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसको कहते सूत मूंझा हुआ है, इसको उलझाऊं कैसे, जैसे
ज्ञान लेडी भी ने फंस गया ऐसे वाला।
हाँ तो इसको कहा जाता है सहज याद। अब गुटका नहीं खाना है, परेशान नहीं होना है, परेशान हो जाता है ना क्या करूं कैसे करूं, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है भाई, छोड़ो इसको। तो इस जब ऐसी स्टेज तो आ ही नहीं सकती उसके सामने, तो गुटका नहीं खाना है, इसको कहा जाता है सहज याद। ये तो बाबा को याद करना बड़ा सहज है। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है, आत्मा ही शरीर धारण करती है, पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी ही तुमको मिलती, ये नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती, तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति, नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा, हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाट बजाने। हम आत्मा असल वहां के रहने वाले हैं, हम आत्मा असल वहां के रहने वाले हैं, ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, अभी हम आत्माओं को कहां जाना है, घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगर जा नहीं सकते, पवित्र बनने बिगर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को ही याद करना है, पवित्र बनने के लिए परमात्मा बाप को ही याद करना है, याद करते करते पाप मिट जाएंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, करते करते बाबा की श्री मत पर चलते चलते तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो, पैदल करने जा रहे हो, सैर करने जा रहे हो तो बाबा की याद में रहो। सैर करते हुए क्या करेंगे बाबा की याद, आप यदि घूमने जा रहे हो
रास्ते से बचे रहेंगे भाई जी।
नहीं, याद करने का मतलब क्या समझना है कि हम रास्ते में कोई भी मिलता है, किसी को भी देखते हैं तो आत्मा समझकर आत्मा को देखना है, बाबा की डायरेक्शन के अनुसार कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिसके कारण किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे, और किसी से दुख लेना नहीं है, सुख देना है सुख लेना है। इतनी सी बात याद रख के ये अपने व्यवहार में ला के आप कितनी दूर तक पैदल जाओ, ऑफिस जाओ, मार्केट करने जाओ, कोई भी काम करने के लिए आपको परिवार में समाज में कहीं भी कैसे भी जाना पड़ता है, बस इतनी सी तो बात याद रखनी है, हमें बाबा याद है, हम बाबा की याद में जा रहे हैं, चाहे घर में रह रहे हैं, किसी के भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, चाहे वो सांसारिक रीति से कोई भी रिश्ता हो, परंतु हमारी बुद्धि में ये रहे कि ये सब आत्मा है और मैंने कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो इनको दुख पहुंचे, ये यदि दुख दे तो मैंने फील नहीं करना है, मैंने फिर भी सुख देना। और ये बात हमारी बुद्धि में है तो हमें बाबा याद है, हमें और कुछ ज्यादा हार्ड मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सिंपल सी बात ही याद रखनी है कि हमने अपने आप में ये अटेंशन देना है कि ना हमने दुख लेना है ना दुख देना है, सुख देना है और सुख लेना, बस बाबा याद है और कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो, वहां वे तो है ही पवित्र दुनिया, सत्य में तो वहां सारे वो है ही पवित्र दुनिया, वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं, वहां तो तुम नेचुरल चलते हो जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो, ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस अभी ही करना है, बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है, बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है, सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है, शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही, हैं ही आत्माएं। मूल वतन में कौन है? हैं ही आत्माएं। लाइन समझ में आई है? हम जब यहां आते हैं तो हमारी बैटरी खत्म होती जाती है, डाउन होती जाती है, कम होती जाती है। और मूल वतन में तो हम हैं ही आत्माएं, शरीर तो है ही नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं, क्योंकि वहां हम नेचुरल है ना, वहां हमारी बैटरी कम होने वाली बात नहीं होती। मोटर जब चलेगी तब बैटरी कम होती है ना, होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी ही कम चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। और कितनी देर तक चार्ज होती है? कितनी देर में चार्ज होती है?
हर एक आत्मा का अपना अपना टाइम।
जितना समय हम बाबा की उंगली पकड़े रहते हैं तो बैटरी चार्ज होती रहती है।
बैटरी कैसा तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाता है अगर उंगली छोड़ते हैं?
उंगली से डिस्चार्ज नहीं हो, डिस्चार्ज तो शुरू हो जाती है ना, दूसरे लोगों से हम कनेक्शन छोड़ कर जोड़ देते हैं ना, चार्जर से हटा कर हम रिश्ते सारे जोड़ देते हैं, सारे बैटरी को खाना शुरू।
बैटरी तो दिन भर चार्ज लगाते ही रहना पड़ता है।
रहना पड़ेगा, पड़ता नहीं पड़ेगा, यानी रात को भी लगाना पड़ेगा, दिन को भी लगाना पड़ेगा, तब जाके चार्ज। बिल्कुल, बैटरी को खाली कर दिया है ना, अब इसको चार्ज करेंगे तब घर जाएंगे ना। जितनी हम चार्ज लेके आए थे उतनी चार्ज करनी पड़ेगी, चाहे रो कर करे तो चाहे हम हंस कर करें।
रो कर तो नहीं करते भाई जी, नाचकर ही करते, खुशी होती है
बस।
पर मतलब थोड़ी देर के लिए भी चूक हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है।
बिल्कुल, जब बात बीत जाए तो उसको खुद साफ लगा के आगे चलना है।
ये भी है भाई जी, पुराने कोई चार्ज करना नहीं, भी चार्ज नहीं होगी,
नहीं नहीं मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगी, नहीं यही है।
यही
इसी को करना है,
पुरानी को
चार्ज
करो। हाँ,
नहीं होती नहीं है, पुरानी को नया बनाना है, फुल करना है एकदम। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। यहाँ शरीर से कर्म करते हैं बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वो सुप्रीम फादर है जिसको सब आत्माएं याद करती है, सब आत्माएं उसी को पुकारती है, याद करती है। ये भगवान कहते हैं वे बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो और बाप को याद करो। भल घूमो फिरो फिरो और बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज, भगत कोई मुश्किल है नहीं। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बाप आकर सबकी बैटरी को चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं, समझो बाढ़ आई हुई है। तो जो भी भगत होंगे वो भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। अगर अचानक बाढ़ आ जाए तो आप सोच करके देखें, हमें बच्चे ही याद आ जाए, उनको बाहर निकाले, जरूर जरूर इस मन को बाहर निकाले, जल्दी जल्दी करें। मतलब भगवान याद नहीं आएगा ना उस समय, उस समय ये तो ना करेंगे कि चलो बाबा रूम कहाँ है, बैठ जाए वहां पर जा करके, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो मतलब कहने का मतलब है उस समय भी बाबा याद हो, हमारी बैटरी का कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो, हम जल्दी बेबी हो और शांत बीबी, हमारा मन एकदम शांत है। जो कुछ भी होना है वो वही होना है, अनहोनी हो नहीं सकती, इसलिए बड़े शांत मन से क्या चीज उठानी है, क्या चीज कैसे करना है, और सोचते हुए उसी प्रकार से आगे बढ़ो। बस शरीर छूटना है तो उसका डर नहीं होना चाहिए, कोई भी हमें छोड़ के जाता है तो उसका भी डर नहीं होना चाहिए। क्या क्या होगा, चाहे हम बात ठीक ठाक भी होते तो भी कोई चला जाता है, बात करते करते भी चला जाता है। तो जिसने जाना है तो वो जाएगा, जिसने पहले जाना है, जिसने लेट जाना है, जिसने जैसा जाना है, एक सेकंड आगे पीछे कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें बहुत शांत मन से बड़े उससे चलना है, अवस्था को बिल्कुल स्थिर बना के चलना है। तो उस समय मित्र संबंधी धन दौलत या ही याद आ जाता है, फल हे भगवान कहते हैं परंतु वे भी कहने मात्र, वो भी हे भगवान कहते हैं परंतु वे भी कहने मात्र। हे भगवान की जगह भी क्या बोलते हैं बाबा ने, तो हे भगवान का हाय भगवान, अब हाय करते हाय बाबा कहते किया, वो मेरा बच्चा थोड़ा है, वो तो रावण का बच्चा है, हाय तो दुखी है वो, मेरा बच्चा दुखी कैसे होगा, हाय तो बोल ही नहीं सकते, हाय राम भी नहीं कर सकते, हाय बाबा भी नहीं कह सकते। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है, दुनिया में उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर उल्टा ज्ञान देते हैं, भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है, भक्ति में ठोकरे खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात, ये राज बाप बैठ समझाते हैं, ये है बेहद की रात वा दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती, रात क्या हो रही है, रात पूरी होती है, ये अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं परंतु जानते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है, यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके, त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके। वे तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में व जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं, कहाँ कहाँ ले गए, कछुए में मछली में जन्म मरण के चक्कर में भगवान को भी ले गए हैं, कि भगवान भी मर जाता है दूसरा जन्म ले लेता है तीसरा जन्म ले लेता है। वह तो शंकर को मरता हुआ नहीं दिखाया, ब्रह्मा को भी मरता हुआ नहीं दिखाया, विष्णु को मरता हुआ नहीं दिखाया, ये तीनों पैदा होते हुए भी नहीं दिखाए मरते हुए भी नहीं दिखाए, एक ब्रह्मा को दिखाया है, वो कैसे पैदा हो जाता है, विष्णु की नाभि से पैदा हो जाता है, वो भी पूरा बुढ़ा का बुढ़ा, दाढ़ी समेत मुकुट समेत वेद हाथ में पकड़े हुए, देखा ना चित्र के नहीं देखा, विष्णु की नाभि से निकलता हुआ देखा है कि नहीं देखा है,
देखा है भाई, देखा है ना?
नहीं देखा, चलो मैं अभी आपको दिखा देता, मतलब इसकी बड़ी वंडरफुल जो है ना, हमने वीडियो में देखा इसको कैसे दिखाते हैं वो एकदम अजीब किस्म से। ये देख रहे हैं, ये देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, ये विष्णु की नाभि है और ये विष्णु की नाभि से ये डंडी को निकलता हुआ दिखा रहे हैं और ऊपर डंडी में जाकर के ब्रह्मा जी पूरे के पूरे बैठे हैं, हाथ में कमंडल भी ले रखा है, वेद भी ले रखे हैं, सारे सिर ताज कपड़े सपड़े सारे पहने हुए हैं। अब इसकी शॉर्ट में मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि देवताएं जाते हैं, जाकर कहते हैं ताई हो त्राई हो हमें बचाओ, हमारी पृथ्वी को राक्षस पताल में ले गए हैं। तो नारायण उनकी बात को सुनते हैं और आंखें बंद करते हैं और एक जादू का खेल शुरू होता है। यहाँ से कमल निकलता है, ऊपर जाकर के ब्रह्मा निकलता है। अब नारायण ने कुछ नहीं किया, ब्रह्मा ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, ब्रह्मा ऊपर जाकर क्या करते हैं, एक नाक से वराह अवतार होता है। वराह समझते हैं, वराह अवतार? हाँ जी,
नहीं,
वराह जो है ना सुअर को कहा जाता है, जंगली सुअर को वराह कहा जाता है। तो वो ब्रह्मा की नाक से पैदा होता है और उस नाक से पैदा होने वाले वराह जा करके पाताल में जो पृथ्वी को लेके गया था उसको लेकर के पृथ्वी को लेकर के आ जाता है। जब वो पृथ्वी को लेकर के आता है तब जो है ना वे उन सबको क्या करते हैं, पृथ्वी देवताओं को वापस करते हैं। और जब देवताओं अब वही ये तो मैं मेरे को भी बहुत समय ब्राह्मण का बेटा होकर के भी नहीं जानता था, परंतु यहाँ आने पर ज्ञान में आने के बाद जब मैं देखा तो मुझे ये प्रश्न खड़ा हुआ कि बताओ भगवान को भी मतलब जन्म लेने के लिए सुअर का भी अवतार लेना पड़ा, तो ये कैसा हुआ, क्या हुआ? सुअर का अवतार क्या है?
तो
फिर को बताने के लिए ये है वराह अवतार जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वराह अवतार है नहीं, और इस वराह अवतार को
इसमें भाई जी वो आर्क को समुद्र में फेंक देते हैं, फिर वो अपने उसके लिए आता है और
ये वराह अवतार है। ये देखिए ये है सुअर जैसा अवतार है ना, ये सुअर अवतार दिखाई दे रहा है, मैं और बड़ा कर रहा हूँ ये, और इसके नाक पर क्या रखा हुआ है,
धरती
रखी हुई है। मतलब ये जाकर के धरती को पताल में से उठाकर लाता है और आकर देवताओं को देता है धरती के अंदर। मतलब मतलब राक्षस जो है वो पृथ्वी को पाताल में ले गए थे और फिर ब्रह्मा ने वराह को पैदा किया सुअर जैसे मुंह वाले को, एकदम सुअर बना रखा है, और फिर वो पृथ्वी को निकाल कर आता है। इसका असली राज क्या है? इसका असली राज ये है कि पृथ्वी पाताल में नहीं जाती, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का चरित्र जो है ना पाताल में चला गया। बात समझ में आई है? आज सारी दुनिया का करैक्टर जो है ना बॉटम में चला गया, तो परमात्मा आकर फिर से हमारे करैक्टर को ऊपर उठाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो मतलब ये मतलब ब्रह्मा के पैदा होना उन्होंने पता नहीं कहां से कैसे कैसे कहानियां गढ़ी हैं। मैं ये कहानियां सुनाया करता था ब्राह्मण होने के रूप में, बड़े नशे से सुनाता था, परंतु अब समझ में आया कि बताओ क्या करते थे हम, वराह सुअर को भगवान समझे बैठे, कितनी कमाल की बात है। इसलिए हिंदू कभी सुअर को मतलब बात समझने वाली है कि कितना हमारे पास बेड़ा गर्क था चरित्र का, बुद्धि का हमारे का। अब बाबा आकर हमारी बुद्धि को फिर से जो है ना कछुआ बनना, मछली बनना, दुनिया भर के जो है ना ये अवतार दिखा रखे हैं। ये वराह अवतार भी वंडरफुल जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु देवी गुणों वाले हैं। अभी तुमको ऐसा बनना है, अभी तुमको ऐसा बनना है। दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वे अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको ये शिक्षा मिल रही है, अब तुमको ये शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, हम कौन है? पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं ये नहीं समझते हैं, अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना, ऊपर जाना माना
मरना,
ऊपर जाना माना मरना, इस शरीर को छोड़ना। अब बताओ मरना कौन चाहते हैं? क्वेश्चन पूछ दिया है, कौन मरना चाहते हैं बता दो। यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरो, शरीर को मत छोड़ो परंतु जीते जी मर जाओ, शरीर में रहते हुए पहले ही मर जाओ। तुमको सिखलाते हैं जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए हो अपने घर जाने के लिए, घर कैसे जाना है, घर भी कैसे जाना है, ये ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है, तुम्हारा इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जावें, पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है। ये ड्रेस है हमारी, ये शरीर हमारी ड्रेस है। देखा हर एक की ड्रेस अलग अलग, कैसे कैसे, किसने सिलाई की है?
हमने
खुद बनाई, हर एक ने अपने अपनी ड्रेस खुद बनाई है। कैसे नाक बनाए, कैसे मुंह बनाए, अजीब अजीब, सबके अलग अलग। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर में जाते हैं। ये ड्रेस हमने यहाँ बनाई है, ये ड्रेस यहीं छोड़ के जानी है। हमने बिना ड्रेस के आत्माओं ने ही वापस घर जाना है। तुम्हें भी अब ये चोला छोड़कर जाना है। सतयुग में थोड़े देवी देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं, अनगिनत। वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां क्या होगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी सतयुग में धर्म तो भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो, भक्ति क्या का, सॉरी बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव, क्या कहते हैं? मन मना भव। ये गीता के ही अक्षर हैं, ये किसके अक्षर हैं? गीता में लिखा हुआ है मन मना भव। पर तो कमाल की बात है कि वो इसका मतलब नहीं जानते। मन को मनाकर वो बन जाओ जो बाबा बनाना चाहते हैं। ज्ञान का नाम रख दिया है गीता, सहज राज योग के ज्ञान का नाम उन्होंने क्या रख दिया है? गीता रख दिया है। ये तुम्हारी पाठशाला है, बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारा बाबा की पाठशाला में, हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे को का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा, अपने पापा या बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है, ये बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, ये तो कल्प पहले भी समझाने दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो, अभी तुमको कैसे मिलती है, अभी कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वो कभी विनाश नहीं। हर आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वो कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। आत्मा शरीर से क्या हो जाती है,
अलग
हो जाती है। पक्का हो गया हमें, क्योंकि कल बताया था, आज दोबारा उसको पक्का करा दिया। आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। आत्मा शरीर से अलग हुई, फिर ये शरीर कुछ बोलता ही नहीं है। अभी बाप कहते हैं, बच्चे तुमको वापस घर चलना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तब ही वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य है। इसमें क्या है, पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों, शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहां शरीर ही नहीं, कहां शरीर नहीं, परम धाम में आत्मा पवित्र है। वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। परम धाम में हमारी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल कर रखते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं, वे तो अविनाशी है, वे तो अविनाशी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। ये सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं, जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं। बाप को जानते ही नहीं, मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य को मिट्टी मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, ऐसे नहीं है कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है। गरीबों की नहीं, सबकी मिट्टी चाहे गरीब हो तो चाहे अमीर हो, चाहे अमीर है उसका भी मिट्टी शरीर को जलाना है, और गरीब है तो भी उसके शरीर को जलाना है या दफनाना है। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो, कोई जला देते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, और पारसी लोग क्या करते हैं, एक लोहे का ना जंगला सा बना के ना ऊपर रख देते हैं ताकि वो उसे वहां खा लें आराम से, और जो हड्डियां हैं वो नीचे गिर जाए, और फिर उन हड्डियों को पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं। कुआं बोलते हैं उसको, ऊंची जगह होती है, चबूतरा सा लोहे का जैसे जंगला सा बना दिया, उसके ऊपर रख देते हैं। फिर पंछी मांस खा लेते हैं, हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वे फिर भी काम आती हैं। क्या काम आई, पक्षियों का पेट तो भरा ना। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना। अभी तुमको क्या करना है, आपे ही शरीर छोड़ना है। तुम यहां आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने के लिए, अर्थात मरने के लिए। तो हम ऐसे पागल हैं क्या, बाबा के पास आए हैं शरीर छोड़ने के लिए, वापस घर जाने के लिए, अर्थात मरने के लिए। तो ऐसे कैसे कोई जाता है कहीं। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, परम धाम इसलिए खुशी से जाते हो कि फिर हम स्वर्ग में जीवन मुक्ति में बचाएंगे, जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ करते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे, ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं, बाप को ही याद करते रहना है तो अंत मति सो गति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है, भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है, जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें देवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना, ये सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते हैं, ये चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा की आठ भुजा सौ भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं तो उन्होंने फिर वे चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजा वाला होता थोड़ी है, रावण दस शीश का भी अर्थ है, रावण के जो दस सिर दिखाए हैं बाबा कहते हैं उनका भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य कोई होता नहीं है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, ये भी खेल है, ये कोई को पता नहीं है कि
मनुष्य और महिलाओं के,
हाँ पांच सिर पुरुष के और पांच सिर स्त्री के होते हैं, परंतु दस सिर नहीं होते हैं, ग्यारह सिर होते हैं। नहीं, उसके अलावा एक गधे का सिर होता है।
गधे का क्यों
होता है बताओ भाई, अब बताओ कैसे बताएंगे गधे का सिर क्यों होता है, कौन बताएगा गधे का सिर क्यों होता है भाई?
भाई जी मैं आपको ना मेरे ड्रामा भेजने वाला।
हाँ तो गधे का सिर बताओ कौन बताएगा भाई, इसके प्रश्न का उत्तर दो, गधे का सिर क्यों होता है?
भाई जी कहते हैं जैसे गधे को कितना भी मिलाओ दबाओ तो जितनी आकर वो ऐसे आज का मनुष्य कितना भी पढ़ा लिखा ज्ञानी हो तो विकारों से ग्रस्त है वो।
गधे का सिर इसलिए कहा जाता है कि गधा जो है मूर्ख को कहा जाता है, जैसे आपने बताया गधा मूर्ख को कहा जाता है, रावण के लिए कहा जाता है। ये रावण देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको रावण
जी?
यानी इस रावण के साथ हमने जो रावण बनाया ना उसमें हमने लिखा है कि ग्यारहवां सिर क्यों दिखाया है रावण, ये गधे का सिर दिखाई दे रहा है रावण के ऊपर। रावण जो है चार वेद छह शास्त्र अठारह पुराणों का ज्ञाता होने पर भी विकारी था, इसलिए गधे का सिर लगाया गया। दिखाई दे रहा है? और ये भी हाँ, इसको हमने ये चित्र में लिख दिया था, ये मैंने बताया था कि हमारा चित्र बहुत बड़ा मतलब दो मंजिल ऊंचा मतलब बना हुआ है चित्र ये, और उस चित्र का ये फोटो है, और ये पूरा का पूरा मतलब चित्र पूरा उसके साथ सारा डिटेल लिखा हुआ है, जहाँ रावण का दशहरे जलाते हैं वहाँ ये बड़ा बड़ा टांग देते हैं, जिसके भाग्य में होता है वो आके इसको पढ़ लेता है, समझाने के लिए खड़े नहीं होते क्योंकि वहाँ शोर बहुत होता है। जिसने पढ़ लिया समझ में आ गया, पर्चा भी यही बना रखा है तो पर्चा भी दे देते हैं उनको, बाकी उनका पाठ है हर एक आत्मा का। तो ये भी खेल है, ये कोई को पता नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ है, परंपरा कह देते हैं, अरे वे भी कब से परंपरा तो कह देते हैं, आखिर कब से, अपने लिए बार बार पूछ रहा है कब से, और हम कहते हैं बाबा आखिर कब से शुरू हुआ, अनादि है, अपने टाइम पर अनादि कह देता है और हमें कहता है कि जो है ना वो बताओ कब से। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वे टीचर भी है, तो गुरु भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। इसको बंद कर दो, इसमें देखो सामने दिखाई देगा। गुरु भी है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए मुझे देखो। ये म्यूजियम कोई बात, ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? ये जो म्यूजियम बने हुए हैं, प्रदर्शनियां बनी हुई हैं, ये किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको सामने, यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, बच्चे भी कितने हैं, ढेर हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवानोवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार करवाओ, कहाँ है भगवान? तुम कहते हो भगवान आके पढ़ाता है, तो बताओ कहाँ है भगवान? अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है। ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, आत्मा कहाँ रहती है? भ्रिकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रत्न जड़ित ताज, दोनों ताज नहीं है। दोनों ताज लेने के लिए फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा कल्प पहले मिल, हाँ कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सभी एक ही बात बोलेंगे, सारे एक जैसी बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी आता नहीं है। तुम बच्चे समझते हो वे है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहां से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे, अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूं उनको भी नहीं जानते, उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है, सबकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बाप आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेगा, समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है, बाप के सब बच्चे एक समान, बाप के सारे बच्चे एक समान हैं। उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस शरीर रूपी कपड़े से क्या करना है? ममत्व निकाल कर जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत करनी है? पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। वरदान, आप कल्याण के संकल्प को समाप्त कर, मतलब किसी का भी अकल्याण नहीं करना, बुरा नहीं करना, ऐसा कोई भी संकल्प ना आए जिससे किसी का बुरा हो सकता हो। पहले तो अपने अंदर सबका कल्याण करने वाला संकल्प लेके आना है, अकल्याण के संकल्प को दूर करना है। अपकारी, कितना भी वो तुम्हारा अपकार करने वाला है, उस पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानी करे, आप कल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए, मन में घृणा भाव ना आए। आपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर, फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सर्व के प्रति कल्याण की भावना। आप कल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, आप कल्याण संकल्प मात्र भी ना हो। स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मन मना भव की स्थिति क्या होती है? अपने मन को हर वक्त बाबा की श्रीमत समझाते रहें कि क्या कहते हैं बाबा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बात हम अपने आप को हर समय समझाते रहें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।